नमस्कार। आज हम अखंड ज्योति पत्रिका से पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्बोधन पर बात कर रहे हैं। शीर्षक है ज्ञान और पराक्रम का पथ अध्यात्म। इसमें जो मूल बात है वो ये कि सच्चा आध्यात्मिक जीवन सिर्फ आप कहें ज्ञान या भक्ति तक ही नहीं रहता, उसमें साहस मतलब पराक्रम उसका भी एक अहम स्थान है।
जी बिल्कुल। और पूज्य गुरुदेव शुरू में ही ये स्पष्ट करते हैं कि ये दोनों शक्तियां मतलब आध्यात्मिक बल और भौतिक बल या जिसे उन्होंने ज्ञान और पराक्रम कहा है, ये दोनों जरूरी हैं।
हाँ, और इनमें संतुलन ही सुख शांति लाता है, ऐसा उनका कहना है।
बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, विचार ये है कि ज्ञान और पराक्रम ये अलग अलग नहीं है, ये एक दूसरे के अपूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री।
अच्छा।
सिर्फ जानना या ज्ञानी होना काफी नहीं है, उस ज्ञान को बचाए रखने के लिए, उसे जीवन में उतारने के लिए हिम्मत चाहिए, पराक्रम चाहिए।
हाँ, ये बात तो है।
जैसे मान लीजिए बगीचे में आपने बहुत अच्छे बीज बो दिए, लेकिन अगर आप उसकी देखभाल न करें, जंगली घास फूस से जानवरों से न बचाएं,
तो सब बेकार, फसल नहीं मिलेगी।
बस वही बात है, ज्ञान बीज है तो पराक्रम उसकी रखवाली।
इसी से जुड़ी एक और बड़ी दिलचस्प बात पूज्य गुरुदेव कहते हैं तेज के बारे में।
हाँ।
एक अंदरूनी शक्ति, एक आभा।
जी हाँ, तेजस्विता।
हाँ, तेजस्विता। वो सांप और संत वाली कहानी याद है ना?
बिल्कुल याद है। संत ने सांप को कहा कि काटना बंद कर दो, अहिंसा अपनाओ।
हाँ, तो सांप ने काटना बंद कर दिया, फिर क्या हुआ?
फिर तो बच्चे भी उसे पत्थर मारने लगे, लोग उसे सताने लगे, बेचारा लहू लुहान हो गया।
फिर वो संत के पास गया रोते हुए।
तब संत ने क्या कहा?
अरे भाई, मैंने काटने को मना किया था, फुफकारना क्यों छोड़ दिया?
सही बात है, मतलब अपनी रक्षा तो करो।
बिल्कुल।
दया, क्षमा, ये सब गुण तभी सार्थक हैं, तभी टिकते हैं, जब उनके पीछे तेज हो, एक शक्ति हो।
और ये तेज सिर्फ शारीरिक बल में नहीं है।
नहीं नहीं, ये मुख्य रूप से आंतरिक तेजस्विता है। हमारी भारतीय संस्कृति में इसी तेज पर बहुत जोर दिया गया है। आप देखिए, श्रृंगी ऋषि का उदाहरण है, पिता का अपमान हुआ तो उन्होंने शस्त्र नहीं उठाए।
हाँ, उन्होंने अपने तपोबल का प्रयोग किया।
जी, या फिर दमयंती को लीजिए, सिर्फ अपनी सत की शक्ति से, अपनी दृष्टि से शिकारी को भस्म कर दिया। ये क्या है? ये है आध्यात्मिक तेज, आत्मबल।
तो ये तेजस्विता सिर्फ बाहरी चुनौतियों, बाहरी दुश्मनों के लिए नहीं है?
बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो कहूंगी कि इसकी ज्यादा जरूरत हमें अपने अंदर के शत्रुओं से लड़ने के लिए।
अंदर के शत्रु जैसे?
जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, ये जो षड्रिपु कहलाते हैं।
हाँ, ये तो असल दुश्मन है।
ये हमें अंदर से कमजोर करते हैं, इनसे लड़ने के लिए भी वही दृढ़ता, वही पराक्रम चाहिए।
स्वामी विवेकानंद जी वाली घटना भी तो यही सिखाती है, बनारस वाली।
हाँ, बंदरों वाली, जब बंदर उनके पीछे पड़ गए वो भागे,
तब किसी ने कहा रुको, सामना करो,
और जैसे ही वो पलटे, दृढ़ता से खड़े हुए, बंदर भाग गए।
बिल्कुल, यही हमें अपनी वासनाओं, अपनी बुरी आदतों के साथ करना है।
जी, दृढ़ता से उनका सामना करना है, जैसे पूज्य गुरुदेव ने उदाहरण दिया था वो हुक्का पीने वाले सज्जन का।
हाँ, जब उन्हें आत्मग्लानी हुई तो बस
चिलम उठाई और पत्थर पर दे मारी, संकल्प कर लिया कि अब नहीं, और आदत छूट गई। ये पराक्रम है।
सही। इसी संदर्भ में पूज्य गुरुदेव तीन शक्तियों की बात करते हैं ना, ओजस, तेजस और वर्चस।
जी हाँ, ओजस यानी शारीरिक शक्ति, स्वास्थ्य, जीवनी शक्ति।
जी।
तेजस यानी मानसिक शक्ति, बुद्धि की प्रखरता, प्रतिभा। और वर्चस यानी आत्मिक शक्ति, प्रभाव, जिसे हम पर्सनालिटी या आभा कह सकते हैं।
और ये तीनों जीवन में उन्नति के लिए जरूरी हैं?
बहुत जरूरी, इनके बिना व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता, और अगर ये ना हो तो दो दुश्मन हम पर हावी हो जाते हैं।
कौन से दो दुश्मन?
आलस्य और प्रमाद।
आलस्य, पूज्य गुरुदेव ने इसे मानसिक लकवा कहा है, कितनी गहरी बात है।
वाकई, जैसे शारीरिक लकवा शरीर को निकम्मा कर देता है, वैसे ही आलस्य मन की शक्तियों को, इच्छा शक्ति को पंगु बना देता है।
और प्रमाद, उसका क्या मतलब है?
प्रमाद यानी लापरवाही, टालम टोल करना, किसी काम को आधे अधूरे मन से करना, बेपरवाही।
अच्छा।
ये दोनों आलस्य और प्रमाद हमारी भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की प्रगति को रोक देते हैं।
सोचिए, जो महापुरुष हुए उन्होंने इसी छोटी सी जिंदगी में कितने बड़े बड़े काम किए।
क्यों? क्योंकि वे आलस्य और प्रमाद से कोसों दूर थे, उनके पास ओजस, तेजस, वर्चस्व था।
सही कहा। यहाँ गीता का वो प्रसंग भी बिल्कुल फिट बैठता है, अर्जुन वाला।
हाँ, कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन हथियार डालने लगे, युद्ध से विमुख होने लगे।
तब श्री कृष्ण ने उन्हें फटकारा।
जी, उन्होंने कहा, क्लैबियम मास्म गमा पार्थ, हे पार्थ कायर मत बनो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता,
उठो युद्ध करो।
बिल्कुल, ये सीधा संदेश है कि अध्यात्म का मतलब पलायन करना नहीं है, भागना नहीं है।
जीवन तो एक धर्म क्षेत्र है, एक कुरुक्षेत्र है।
तवह बनकर यानी लड़ने की इच्छा के साथ चुनौतियों का सामना करना है।
शांति संघर्ष से भागने में नहीं बल्कि उस पर विजय पाने में।
बिल्कुल।
तो फिर अगर अध्यात्म पलायन नहीं है, सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, तो फिर है क्या? मतलब असल में अध्यात्म क्या है?
पूज्य गुरुदेव समझाते हैं कि असली अध्यात्म है अपने पूरे जीवन को, अपने मन, वचन और कर्म तीनों को आध्यात्मिकता के सांचे में ढाल देना। जैसे कपड़ा रंग में पूरी तरह डूब जाता है ना, वैसा।
मतलब पूरी तरह से अपना रूपांतरण करना।
हाँ, स्वयं को मांजना, धोना, तपाना, ये प्रक्रिया है अध्यात्म।
और इस प्रक्रिया को करने के तरीके क्या बताए?
मुख्य रूप से दो धाराएं बताई हैं, योग और तप।
योग और तप।
योग का मतलब है जुड़ना, परमात्मा से जुड़ना, अपनी आत्मा से जुड़ना। इसमें ध्यान, भक्ति, ज्ञान, कर्म, समर्पण, ये सब आते हैं। ये हमारी भावनाओं का परिष्कार करता है, उन्हें ऊंचा उठाता है।
अच्छा, ये योग हुआ और तप?
तप है आत्मानुशासन, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, इच्छा शक्ति को मजबूत करना। देखिए, शरीर तो आराम चाहता है, मन इधर उधर भागता है, तप इन दोनों को साधने का तरीका है, संकल्प बल बढ़ाता है।
तो मतलब योग भाव शुद्धि करता है और तप संकल्प को दृढ़ करता है।
बहुत बढ़िया कहा आपने, बिल्कुल यही। और ये दोनों योग और तप मिलकर ही व्यक्ति को पूर्ण बनाते हैं, उसे ज्ञान और पराक्रम दोनों से संपन्न करते हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है, ज्ञान बिना कर्म अधूरा, कर्म बिना ज्ञान दिशाहीन।
पूज्य गुरुदेव ने अपने उद्बोधन के अंत में एक बड़ी मार्मिक अपील भी की है।
जी, उन्होंने कहा कि वे ऐसे शिष्य, ऐसे साथी चाहते हैं जो उनके बताए इस ज्ञान और पराक्रम के रास्ते पर चल सकें।
हाँ, जैसे राम के साथ लक्ष्मण थे या कृष्ण के साथ अर्जुन।
बिल्कुल, वो अंधे और लंगड़े वाला उदाहरण भी दिया है।
हाँ, कि एक देख सकता है पर चल नहीं सकता, दूसरा चल सकता है पर देख नहीं सकता।
दोनों मिल जाएं तो मंजिल तक पहुंच सकते हैं।
तो ऐसे ही सहयोगियों की, ऐसे पराक्रमी ज्ञानियों की तलाश में थे।
जी, तो देखिए, इस पूरी चर्चा का सार यही निकलता है कि सच्चा अध्यात्म एकांगी नहीं है, वो सिर्फ एक पक्षीय नहीं हो सकता। उसमें ज्ञान की गहराई भी चाहिए और कर्म का, साहस का, पराक्रम भी चाहिए।
जीवन एक कुरुक्षेत्र है और इसमें जो आंतरिक और बाहरी चुनौतियां हैं,
उनसे लड़ने के लिए हमें ईश्वर से जुड़ने का योग भी चाहिए और अपनी कमजोरियों पर विजय पाने का तप और पराक्रम भी।
बिल्कुल, ये केवल पूजा कोठरी तक सीमित रहने वाला विषय नहीं है बल्कि जीवन जीने का एक समग्र तरीका है, एक कंप्लीट वे ऑफ लाइफ।
सही कहा।
तो चलिए, आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं और सोचने के लिए एक प्रश्न छोड़ जाते हैं कि हम सब अपने अपने जीवन में, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ज्ञान और पराक्रम के इस संतुलन को कैसे साध सकते हैं।
जी।
ओम शांति।
ओम शांति।